परंपरा में नया क्या होता है। संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा और आधुनिकता के अंतर संबंधों की व्याख्या के लिए संस्कृति के मूल तत्व को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृति मानव समाज की ऐसी अलिखित संहिता है जो पारंपरिक मूल्यों को निरंतर प्राणवायु प्रदान करते हुए जीवंत और चेतन बनाए रखती है। एक दृष्टि से परंपरा पराशक्ति है, लेकिन वही सामाजिक जीवन का स्पंदन भी है, इसलिए उसका स्वरूप सदा एक सा नहीं रहता। मानव समाज के नए सुने अनुभवों को श्रेष्ठत्व को आत्मसात करते हुए वह स्वयं गतिशील रहती है। संस्कृति की यदि गतिशीलता परंपरा है, यदि परंपरा गतिशील नहीं है तो बदलते हुए समय के नए प्रश्नों से साक्षात्कार नहीं कर सकती। अंततः वह परंपरा या तो रूढ़ी बन जाती है अथवा समय चक्र के आघातों को सहन न कर पाने के कारण मृत हो जाती है। किसी समाज के मृत हो जाने पर उसकी परंपराएं भी मृत हो जाती हैं, वे केवल अतीत बनकर रह जाती हैं, उनकी स्मृति नए मनुष्यों की समस्याओं के समाधान में निरुत्तरित रह जाती है। विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियों के अतीत बन जाने का कारण यही है। हजारों वर्ष पूर्व के मनुष्य के सांस्कृतिक मूल्य वही नहीं थे जो आज है, और यह आज निरंतर बदलता रहता है। बदली हुई सम और विषम परिस्थितियों, उपलब्धियों और हतोपलब्धियों, उत्कर्ष और अपकर्ष के चक्राधार से विनिर्मित मनुष्य के निरंतर संघर्ष की अनुभव यात्रा उसे शक्ति ही नियमित नहीं होने देती। अतः परंपरा संगठित समाज ही निरंतर संघर्ष की जीवन शक्ति है। यदि कोई मृत प्राय समाज संगठन की जीवनी शक्ति लेकर फिर चेतन हो जाता है तो उसकी प्राचीन संस्कृति उसे अधिक जीवन सामर्थ्यवान और तेजस्वी बना देती है। उस समय प्राचीन मृतप्राय संस्कृति की अनेक मूल्यवान तत्व नई मीमांसा तर्क और विवेक के बल पर स्वयं कुंड रूढ़ियों से मुक्त कर लेते हैं जो उसके लिए निरर्थक हो चुकी है। विवेक और तर्क के आधार पर जो रूढ़ियाँ समाज को स्वीकृत होती हैं वे परंपरा के रूप में उस समाज में नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। रूढ़ियाँ विवेकजन्य नहीं होती, परंपरा होती है। परंपरा सदा नीरा है, निरंतर प्रवाहमान है। हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा की यही आधार भूमि है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भी मनुष्य की सांस्कृतिक एवं सामाजिक सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए थे। दो महायुद्ध के विभिषिका ने मनुष्य को समस्त आस्थाओं, मान्यताओं और मूल्यों को पूरी तरह झकझोर दिया। पाश्चात्य देशों में जहाँ इस विभिषिका का प्रत्यक्ष संदर्शन और दर्शन हुआ था, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य में इसका प्रतिरूपण तात्कालिक और त्वरित रूप में परिलक्षित हुआ। प्रदर्शनकारी कलाओं जैसे रंगमंच, नृत्य और संगीत आदि में इसका अनुसरण किया गया। मनुष्य की स्वायत्तता की ये नव विचारयुक्ति तीव्रता और आक्रामक भंगिमाओं में संपूर्ण पाश्चात्य जगत में उभरे। हमारा देश भी उनसे अछूता नहीं रहा। साम्राज्यवाद के आच्छादन में जीवित रहते हुए मनुष्य के लिए अपरिहार्य भी था। पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक उपलब्धियों ने हमारे देश के हतप्रत बुद्धिजीवी वर्ग को अपने जिस शिकंजे में कसा वह संभवतः हमारे देश की स्वाभाविक प्रणति थी। हम अपनी सांस्कृतिक गरिमा और विशेषताओं को पूरी तरह भूल जाने के लिए अभिशप्त थे, क्योंकि अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को ही हमने अपने पिछड़ेपन का मूल आधार स्वीकार कर लिया था। हम एक ऐसे देश के निवासी थे जो आधुनिकता के संदर्भ में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को त्याज्य या अवरोधक तत्व मानने लगा था। यह प्रत्यक्षता दास मनोवृत्ति का परिणाम था, लेकिन साम्राज्यवाद के कुछ संघातों ने हमारे मृत प्राय समाज के आर्तनाद को फिर एक नव विचार के लिए प्रेरित किया। 150 वर्ष, केवल 150 वर्ष पहले की यह बोध वैचारिक संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हुआ, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थितियों में और अलग अलग भंगिमाओं में। हमारे देश के दुर्बल और निसहाय मनुष्य को संबल देने के लिए ऊर्ध्वमुखी चेतना फिर संकलित हुई। समाज में जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय की सीमाएं तोड़कर संगठित रूप से अस्मिता के संघर्ष की कुलाहट शुरू हुई। समाज का विवेक शोषण और शोषित की खेमे में बंटने लगा। एक ओर आधुनिकता के नाम पर शोषण के नए प्रकल्प उभरने लगे तो दूसरे अवरोधक शक्ति के रूप में शोषण के विरुद्ध एक नई चेतना रूपाकार होने लगी। यह एक अत्यंत दिलचस्प बात है कि दो महायुद्धों के जिस विभिषिका ने पाश्चात्य देशों के समाज को विखंडित करने की जमीन तैयार की, वही विभिषिका हमारे देश के समाज को फिर से संगठित करने की प्राणदायिनी शक्ति का कारक बनी। तृतीय महायुद्ध के बाद साम्राज्यवादी शक्तियों का ह्रास आरंभ हुआ और हमारे समाज में अपने गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक परंपराओं की विशेषताओं को पुनर्व्याख्यायित और पुनर्प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया। भले इस संकल्प के अंक 150 वर्ष पहले ही मुखरित होने लगे थे, फिर भी नवचेतना के संवाहक के रूप में इसकी महत्ता द्वितीय महायुद्ध के बाद ही सिद्ध हुई। यह इसी संकल्प का प्रतिफल था कि नवजागरण, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक पुनरुत्थान जैसे अनेक उद्गम स्थलों से शक्ति ग्रहण करता हुआ स्वतंत्रता आंदोलन पूरे देश में ज्वार की तरह छा गया। यह नवोन्मेष राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला आदि अनेक माध्यमों में भारतीय पारंपरिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा का कारक तत्व बढ़ा। लेकिन उस समय भारतीय बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो आधुनिकता के छद्म में पाश्चात्य देशों से प्रेरणा प्राप्त करना श्रेयस्कर चमत्ता था। हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसके बढ़ते दुष्परिणाम से दुखी होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, यूरोप के साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित मतों बातों को कच्चे पक्के ढंग से सामने लेकर कुतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना अपने मस्तिष्क शून्यता के साथ ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना है। काव्य और कला पर निकलने वाले भड़कीले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता और स्वतंत्र विचार का अभाव देख दुख होता है। ऐसा नहीं कि हमारी साहित्य प्रथाओं ने काव्य और कला के विकास में पाश्चात्य साधक तत्वों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन तो इतना अवश्य कि अपने साहित्य को सांस्कृतिक विरासत को अनदेखा करके विकास या आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य अंधानुकरण उन्हें स्वीकार नहीं था। अपने इसी लेख के अंत में आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट किया, किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं की जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी हो जाए, उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुंचे। उनका यह कहना उचित नहीं होगा कि बौद्धिक और वैचारिक स्तर पर पाश्चात्य अवधारणाओं का विवेचन हुआ ही नहीं, किंतु सृजनात्मक स्तर पर यह पृथकीकरण आज भी कायम है। व्यक्ति को समाज के संगठित स्वरूप में पूरी तरह काट कर नितांत एकाकी बना देने की पश्चिममयी अवधारणा निरंतर बदलती पड़ती है। भारत उत्तर आधुनिकतावादियों की जमीन मनुष्य को नितांत एकाकी विखंडित और अंतर्जन के सूक्ष्मतम अवयवों को ला देने का वैचारिक यत्न है। कला और समाज के अंतर संबंध को पूरी तरह विनष्ट करके कला को कला के लिए स्थापित करने की अवधारणा इसका गोमुख है। व्यक्तित्व की अंतर चेतना ही कलात्मकता सृजन की अनिवार्य भूमि, किंतु क्या यह व्यष्टि को समष्टि तक पहुंचाने का सेतु नहीं? क्या कलात्मक सृजन मानव जीवन का अविभाज्य अंग नहीं है? वह मानव जीवन तो एकाकी नहीं, सामाजिकता की लड़ाई इकाई है। इस संबंध में पंडित विद्यानिवास मिश्र का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण जान पड़ता है। कलात्मक दृष्टि को यह कहना कि कोरी आध्यात्मिक दृष्टि है या कहना कि इंद्रिय दृष्टि है, दोनों गलत है। कला को यह कहना कि जीवन के लिए है या कहना कि कला कला के लिए है, ये दोनों भ्रांत दृष्टियाँ हैं, क्योंकि कला या कोई भी अनुष्ठान जीवन का अंग है। जीवन के लिए होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जीवन के हाशिए में नहीं है, वह जीवन का अंग है। दैनंदिनी व्यवहार का अंग है षष्ठो, एक विशेष प्रकार का व्यवहार है, चलने का, बैठने का, भोजन करने का, लोगों के आगे विशेषशील का व्यवहार करने का। यह सारा जो विन्यास है अपने अपने सौष्ठव रखता है, और यह सब इसी भाव से होता है कि यह जो छोटा मैं है इसका कुछ नहीं है, पर यह पर के लिए है, दूसरे के लिए है, उसी के लिए सार्थक होता है। भारतीय और पाश्चात्य देशों के सांस्कृतिक अवधारणाओं के विभाजन का प्रस्थान बिंदु यही विचार है। दो विभिन्न समाज हैं, उनके अनुभव अलग अलग हैं, दर्शन अलग अलग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पारंपरिक मूल्य भी हमारे समाज के मूल्यों से एकदम भिन्न हैं। इसीलिए अपने समाज के बदलते हुए पारिस्थितिक समस्याओं और उनके समाधान के लिए हमें अपनी ही जमीन की तरफ लौटना होगा। आधुनिकता की सार्थकता परंपरागत मूल्यों को ध्वस्त करने में नहीं, बल्कि बदलते हुए समाज की नई चुनौतियों, नई समस्याओं और नए दबावों के जूझते मनुष्य को ऊर्जा और शक्ति देने में है। नए से नया विचार यदि उस टूटे हारे दलित शोषित खंडित भ्रंडित मनुष्य को संजीवनी प्रदान कर सकने में असमर्थ है, जो भले यह कितना भी आकर्षक और सम्मोहक क्यों न हो, कालांतर में हाशिए पर जाने के लिए विवश हो जाता है। उसकी सामाजिक स्वीकृति ही उसे जीवंतता प्रदान करती है। आधुनिकता का मूल भाव मनुष्य के सामाजिक उत्कर्ष में अंतर नहीं था, किंतु सामाजिक उत्कर्ष की बुनियाद में मनुष्य की अंतर चेतना की भूमिका प्रमुख है। मनुष्य का अकेलापन भले वह कितना ही बड़ा सत्य क्यों न हो, आंशिक है, दैहिक है, एकांतिक है। यह एकांतिक दर्द जब अपने आसपास के वातावरण से एकात्म होता है, तो फिर वह निजी या दैहिक मात्र नहीं रहता, वह एक व्यापक भावबोध में बदल जाता है। संघर्ष का यही भावबोध उसे संगठित होने के लिए प्रेरित करता है। संगठित समाज के उत्कर्ष के लिए नए मूल्यों की स्थापना संभव होती है। आधुनिकता का यही लक्ष्य बिंदु है, लेकिन यह आधुनिक भावबोध क्या परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करके या उसे पूरी तरह नकार कर ही जन्म लेता है? अपने समाज, अपनी जमीन, अपनी समस्याओं के समाधान और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वह कौन से आयुध ग्रहण कर सकता है? अपने इतिहास, संस्कृति, परंपरा को तज कर यदि कोई विचार अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहरी शक्तियों से सहायता लेता है, तो क्या वह विचार अपने समाज के मनुष्यों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह समर्पित हो सकता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है, कोई भी आधुनिक विचार आसमान से नहीं पैदा होता है, सबकी जड़ परंपरा में गहराई तक गई हुई है। सुंदर से सुंदर फूल यह दावा नहीं कर सकता कि वह पेड़ से भिन्न होने के कारण उससे एकदम अलग है। कोई भी पेड़ दावा नहीं कर सकता कि वह मिट्टी से भिन्न होने के कारण उससे एकदम अलग है। इसी प्रकार कोई भी आधुनिक विचार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से कटा हुआ है। वैसे तो आधुनिक भावबोध अपनी सांस्कृतिक परंपरा से ऊर्जा ग्रहण करके ही सही मायनों में आधुनिक हो सकता है। परंपरा के जिन मूल्यों का उस समाज के लिए कोई औचित्य नहीं वो उन्हें अस्वीकार कर देता है, और साथ ही वे मूल्य जो उसे समय की दबावों से मुक्त कराने में सहायक हो सकते हैं उनकी पुनर्व्याख्या करता है, अपनी परंपरा को संशोधित करते अर्थहीन हो चुके रूढ़िगत मूल्यों को अस्वीकार कर देता है और सार्थक मूल्यों की बुनियाद पर नए विचारों, नई मान्यताओं और नई संभावनाओं की खोज करता है। अपनी परंपरा के जमीन पर टिका हुआ आधुनिक भावबोध ही सामाजिक स्वीकृति का वाहक सिद्ध होता है। पाश्चात्य देशों में ऐसा ही हुआ, किंतु हमारे देश में पाश्चात्य मान्यताओं और अवधारणाओं को ही आधुनिक समझकर एक बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने सामाजिक सत्य को पूरी तरह झुठला दिया। वैज्ञानिक उपलब्धियों, वैश्वीकरण और संपूर्ण मनुष्यता के सांस्कृतिक संघर्ष के नाम पर ऐसी अवधारणाओं को आरोपित करना आरंभ कर दिया जिसका हमारे देश के विशाल जनसमूह से किसी किस्म का कोई संबंध ही नहीं था। इसलिए हमारे देश में आधुनिकता और परंपरा को दो ऐसे कोष्ठकों में विभाजित कर दिया मानो इसमें कोई आपसी रिश्ता नहीं। परंपरा की बात करने वाले लोग परंपरावादी कहलाए जाने लगे और आधुनिकता के झंडा बरदार नए संघर्ष के वाहक रूप में प्रतिष्ठित होने का ढोंग रचने लगे। वस्तुतः परंपरा और आधुनिकता के संदर्भ में कोई परस्पर द्वेष नहीं होता। जो विचार कल तक आधुनिक था वह कालचक्र के निकष पर नई परंपरा का जनक होता है। उसी जमीन पर टिके हुए आधुनिक मूल्य समाज को स्वीकार होते हैं, वे आरोपित या आयातित नहीं होते। आरोपित या आयातित मूल्यों से निश्चित विचार फैशन बन सकते हैं, लेकिन उनकी आय बहुत क्षीण होती है। वे जितनी जल्दी जन्म लेते हैं सांस्कृतिक इतिहास के क्रम में उतनी ही जल्दी मर भी जाते हैं। वैश्विक आधुनिकता का सबसे बड़ा खतरा यही है। सच तो यह है कि ये तथाकथित वैश्विक आधुनिकतावादी सबसे अधिक दरिया सुकूनी और परांगमुखी हैं, जिनका अपने देश, समाज और संस्कृति संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। फिर नए विचार और नई दृष्टि के लिए पश्चिमी देशों की नकल करने में आधुनिक भावबोध की सार्थकता समझते हैं, लेकिन सुखद तथ्य यह भी है कि इस आयातित और आरोपित आधुनिकता के चरणें धीरे धीरे खोखली होती जा रही हैं। दूसरी ओर ऐसे बुद्धिजीवियों का वर्ग तेजी से उभरने लगा है जो मूल्यवान पारंपरिक तत्वों का विवेचन विश्लेषण करके पश्चिमी विचारों के श्रेष्ठत्व से सार ग्रहण कर रहे हैं। उनकी आधुनिकता भारतीय पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करते हुए उन रूढ़ियों और अंधविश्वासों से संघर्षरत है जो हमारे देश के पिछड़ेपन के कारक तत्व रहे हैं। इस आधुनिकता को सामाजिक स्वीकृति भी मिली है और यह दृष्टि भारतीय पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन के लिए नया कलात्मक मानदंड स्थापित करने में भी समर्थित हुई है। स्वतंत्रता के बाद साहित्य और कला के अनेक माध्यमों में ऐसा ही हुआ है। भारतीय साहित्य की नहीं चित्रकला मूर्तिकला भी इसे अपवाद नहीं है। भारतीय कला दृष्टि के प्रति वैश्विक रुझान इसका साक्षी है, लेकिन कहा जाता है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह झकझोर दिया है। आधुनिकता के संदर्भ में भी अर्थहीन हो गई है। नवीनतम तकनीक और संचार माध्यमों की बढ़ती हुई शक्ति ने सारे भूमंडल को एक ही माला में पिरो दिया है। अब देश या समाज की भौगोलिक या ऐतिहासिक सीमाएं समाप्त होने लगी हैं और संपूर्ण मानवता एक ही संस्कृति के पोषक तत्व के रूप में बनने लगी है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे देश की प्रदर्शनकारी कलाएं जितने मुखर रूप से देती हैं संभवतः अन्य कोई विधा नहीं देती। विशेष रूप से अपने सांस्कृतिक मूल्यों की आधुनिक स्वीकृति के संदर्भ में वे कालजयी सिद्ध हो चुकी है। भारतीय प्रदर्शनकारी कला को विवेचन करने से अनेक दिलचस्प भंगिमाएं बढ़ती हैं। यह सर्वमान्य है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य अपनी परंपरा की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थित हुए हैं। गुरु शिष्य परंपरा की अक्षुण धारा उसकी शक्ति और ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत रही है, लेकिन क्या आधुनिकता के श्रेष्ठ तत्वों ने उन्हें नया स्वरूप प्रदान नहीं किया? क्या हमारा शास्त्रीय संगीत आज भी वैसा ही है जैसा कि 100 वर्ष पहले था? क्या आज के समाज को नया कलात्मक बोध प्रदान करने में उसने आधुनिक कुछ भी स्वीकार नहीं किया? एक छोटा सा उदाहरण लें, स्वतंत्रता से पूरे दिवाश्रय और राजाश्रय की छाया तले पनपने वाला हमारा शास्त्रीय संगीत किस प्रकार का रहा होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। माइक्रोफोन के आविष्कार के बाद हमारा शास्त्रीय संगीत जिस तरह जनाश्रय का सहारा लेकर पूरी तरह गरिमा मंडित हो उठा वह सर्वविदित है। शास्त्रीय गान की सूक्ष्मतम विशेषताएं जब असंख्य लोगों को एक साथ आनंदित करती हैं, ठुमरी दादर की गायकी में ऐसे अनेक ही तत्व हैं जो माइक्रोफोन के सहारे अपनी समस्त विशेषताओं को पूरी तरह संप्रेषित कर देते हैं। गमक और मीड के अतिरिक्त अनेक सूक्ष्मतम तत्व स्वरों का आरोह आरोह कल कल निशान निनाद और उत्ताल तरंगों का घोष एक अदृश्य श्रोता जिस रूप से ग्रहण करता है वह पहले संभव नहीं था। आधुनिक समय की वैज्ञानिक उपलब्धियों ने उसे सहज सुलभ करा दिया। शास्त्रीय गान में पूर्व पश्चिम संदर्शन और सम्मेलन से हमारी शास्त्रीय संगीत परंपरा दूषित या विखंडित नहीं हो बल्कि आधुनिक कलाबोध ने उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर उसे नई गर्मी प्रदान की है। ऐसा ही बहुत कुछ हमारे शास्त्रीय नृत्यों के साथ भी हुआ है। ओडिसी जो आज शास्त्रीय नृत्य के रूप में विश्व स्तर पर विख्यात है, उसी 50 वर्ष पूर्व तक लोक नृत्य की विशेष शैली के रूप में जाना जाता था। गुरु पंकज चरण दास और गुरुदेव प्रसाद दास ने गुटीबुआ नृत्य को जो नया कलेवर दिया वह अप्रतिम है। गुरु केलुचरण महापात्र ने सजा चबाकर उसे ही आधुनिक शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। परंपरा और आधुनिकता के ये उदाहरण हमारे शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दुर्लभ नहीं है, लेकिन हमारे रंग जगत की कथा एकदम विचित्र है। एक दीर्घकालीन दास्ता के कारण भारत रंगमंच की शास्त्रीय पद्धति एकदम तिरोहित हो गई। अजस्र के अभाव में वह दिवाश्र और अजनश्र में मुँह छिपाने के लिए आवश्यक थी। नागरी चेतना की दासोन्मुख वृत्ति के कारण वह सुदूर अंचलों में सिमट कर रह गए। उसकी नाट्यधर्मी स्वरूप पूरी तरह नष्ट तो नहीं हुआ, किंतु दिवाश्र और जनाश्र की सीमाओं के कारण उसके विशुद्ध कलात्मक मूल्य विनष्ट होने लगे। कुटियाट्टम और अंकिया नाट से लेकर रासलीला यानी रामलीला, भागवत मेला, तुरुकुत्तु, प्रहलाद नाटक, जात्रा आदि पारंपरिक नाट्यशैलियाँ किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए देवालयों तक सीमित होकर रह गए, जहाँ उन्हें कलात्मक प्रश्रय कम और धार्मिक प्रश्रय अधिक मिला। दूसरी ओर तमाशा बिटिये टू, भवई, नौटंकी, ख्याल, माच, नाचा, पंडवानी, करियाला, विदेशिया, भांडपाथे, नखला आदि अनेक प्रादेशिक रंग शैलियाँ स्थानीय जनसाधारण के कारण विशुद्ध मनोरंजन का साधन बन गई और सामान्य जनों की मानसिक वृत्तियों को तुष्ट करने की व्यवस्था में विकृत होने लगी या हाशिए पर जाने के लिए विवश हो गई। परिणामतः भारतीय रंगमंच के परिदृश्य से स्वस्थ, कलात्मक और समसामयिक संवेदनाओं को तुष्ट करने वाला तथा नई चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हमारा रंगमंच लुप्त प्राय हो गया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के समय शेक्सपियर और अन्य यूरोपीय नाटकों के ने एक ऐसे रिक्त स्थल की पूर्ति की जिसकी ओर हमारे देश का भद्र लोक रंगमंचीय दृष्टि से मुग्ध हो गया। थोड़ी वर्षों में पाश्चात्य रंगमंच ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली कि आज तक हम उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके। भारत हरिश्चंद और उनके उपरांत तुरंत बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने केवल अपने नाटकों में ही नहीं बल्कि वैचारिक सर्वक्रमशः नाटक और रंगमंच शीर्षक से लंबे लिखे निबंध जिनमें भारतीय नाटक परंपराओं की विशेषताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने पाश्चात्य रंगमंचीय अवधारणाओं की सीमाओं का उल्लेख किया, साथ ही अपने समाज के परंपरागत मूल्यों के संदर्भ में उसके श्रेष्ठत्व को रेखांकित किया। उन्होंने पाश्चात्य रंगमंचीय अवधारणाओं के बढ़ते हुए प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त की, लेकिन विविध कारणों से हमारे देश के तत्कालीन रंगकर्मियों नाटककारों ने उनके विचारों की महत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय रंगमंच के विरुद्ध पश्चिमी अवधारणाओं से इतना अधिक आक्रांत थे कि शंभु मित्र, हबीब तनवीर, शांता गांधी आदि द्वारा किए गए श्लाघनीय प्रयोगों के बावजूद भी भारतीय रंग परंपरा के महत्व को आधुनिक रंगमंच के संबंध में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में भारतीय नाट्य संघ द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण रंग संगोष्ठी में इस विषय पर हुई पहली चर्चा को याद करते हुए नेमीचंद जैन ने लिखा, इस विषय पर विचार करते हुए मुझे लगभग 24 वर्ष लगे। नाट्य लेखन और नाटक प्रस्तुति पर भारतीय नाट्य संघ द्वारा आयोजित एक परिचर्चा की याद आ रही है। उसमें एक सत्र में जब यह सुझाव दिया गया कि भारतीय नाटककारों और निर्देशकों को पारंपरिक नाट्य शैलियों जिसे उस समय लोक नाट्य कहा जा रहा था से सीखना चाहिए, जो परिचर्चा के अनेक भागीदारों ने इस विचार की खिल्ली उड़ाई थी। कुछ के मन में शंकाएँ थी और कुछ उदासीन थे। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए जोर देकर कहा था कि गाँव के लिए लोक नाट्य उचित हो सकता है, लेकिन आधुनिक शहरी नाटक जो पाश्चात्य अवधारणाओं से उत्प्रेरित है केवल पाश्चात्य पद्धति पर ही विकसित हो सकता है। स्वाभाविक था कि उस परिचर्चा में उपस्थित पारंपरिक नाट्य शैलियों के गिने चुने समर्थकों को हताश घुसपैठियों की संज्ञा दी गई थी। आज लगता है कि चक्राधार पूरा घूम चुका है। भारतीय पारंपरिक रंगमंच और उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए किए गए संघर्ष का यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस संगोष्ठी के 10 वर्ष बाद संगीत नाटक अकादमी के तत्कालीन सचिव श्री सुरेश अवस्थी ने फिर एक गोलमेज संगोष्ठी आयोजित की। तब तक स्थितियां थोड़ी बहुत बदल चुकी थी। वैचारिक स्तर पर तो गहरी चर्चाएं शुरू हो चुकी थी, किंतु शंभु मित्र, बल्लाल साहनी, दीना पाठक और हबीब तनवीर जैसे महत्वपूर्ण लोग भारतीय पारंपरिक नाटक अवधारणाओं को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से पुष्ट कर चुके थे। 10 वर्ष पहले उन्हीं विचारों के प्रश्न लगाए जा रहे थे, किंतु इस बीच एक नई सृजनात्मकता ने जन्म ले लिया था। फिर भी ये आरंभिक प्रस्तुतियाँ मूलतः संस्कृत नाटकों या लोक कथाओं पर आधारित कथ्य का ही मंचीयकरण था। एक नया प्रश्न उपस्थित हो गया था, क्या आधुनिक संवेदनाओं से युक्त नए कथ्य को पारंपरिक रंग शैलियों पूरी तरह क्षमता के साथ संप्रेषित किया जा सकता है। पाश्चात्य रंगमंच के शीर्षस्थ अध्येता और प्रख्यात रंगकर्मी श्री इब्राहिम अलगाजी ने कहा, जहाँ तक रंग शैलियों का संबंध है वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और संप्रेषण का अभिन्न अंग है। मेरा विचार है कि पारंपरिक नाट्य रूपों की मूल बनावट ही दर्शकों तक अर्थ संप्रेषित करने का एक आंतरिक और अविभाज्य अंग है, क्योंकि उन अनुभवों के अनेकानेक स्तर हैं और दर्शक एक के बाद एक अनुभवों से उस विभिन्न स्तरों तक पहुंचते हैं। अनुभवों के ये विभिन्न स्तर केवल बौद्धिक ही नहीं बल्कि अविचेतन स्तर पर भी हैं। इसलिए संगीत, लयात्मकता, नृत्य, चारी एवं गीति विधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सभी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग इन ऐन्द्रिक तत्वों द्वारा ही किया जाता है, केवल बौद्धिक तत्व का ही नहीं। इसलिए इस बात की संभावना नजर आती है कि जब आप एक पुराने रंग शैली में एक विशुद्ध नया कथ्य पिरोने की कोशिश करते हैं तो रंग शैली अनिवार्य रूप से हाँसी पर चली जाएगी। दूसरी ओर इस बात को गहराई से समझने के लिए शायद प्रयोगात्मक शोध, अनुसंधान एवं अन्वेषण और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की नहायत ज़रूरत है। मेरा विचार है कि रंग शैली को पूर्व स्वीकृति के रूप में अनुष्ठान की तरह नहीं लिया जा सकता। विचारों के संप्रेषण के लिए किसी रंग शैली की तर्क संगतता और महत्ता को समझना होगा। इस संगोष्ठी में डॉक्टर सुरेश अवस्थी के अतिरिक्त श्रीमती कपिलावासयन, सर्वश्री नेमी चंद्र जैन, उत्पल दत्त, जी शंकर पिल्ले, जगदीश चंद्र माथुर, दीनानाथ पाठक, शांता गांधी, हबीब तनवीर, पी एल देशपांडे, गिरीश कर्नाड, पी वी कारंत, बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश, रोमेश चंद्र जैसे वर्षरतम निर्देशकों, नाटककारों और समीक्षकों ने शिरकत की थी। परंपरागत रंग शैलियों के समकालीन प्रासंगिकता के संबंध में इस संगोष्ठी में विचार में विस्तार से चर्चा हुई। कुछ लोगों का कहना था कि पारंपरिक रंग शैलियाँ मूलतः अनुष्ठानिक हैं और केवल धार्मिक भावना के कारण जनप्रिय हैं। समकालीन कथा को संप्रेषित करने के लिए उनसे छेड़छाड़ उचित नहीं। इस विचार का जोरदार खंडन करते हुए इब्राहिम अलगाजी ने कहा, मेरा विचार है कि किसी रंग शैली में परमत्व जैसा कुछ नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि रंग शैलियाँ इतिहास और उपस्थिति के दबाव के अनुरूप सज्जित होती हैं, जैसे कथकली। इसलिए इनमें दिव्य कुछ नहीं, केवल दूसरी ओर उन शैलियों को परम विशिष्टता और धार्मिकता का दर्जा प्राप्त होने के पीछे सबसे बड़ा तथ्य यह है कि ये एक भारी संख्या के लोगों तक अपनी स्वीकृति बनाए रखने में सक्षम सिद्ध हुई है। चेतना के अनेक स्तरों पर उन्होंने जन जन के मन मस्तिष्क को झकझोरा है। साथ ही यह भी पवित्रता और पावनता इतिहास का परिणाम है कि वे अनेक शताब्दियों तक, अनेकानेक पीढ़ियों तक अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल हुई। वे अपनी उपयोगिता, अर्थवत्ता और प्रासंगिकता के संदर्भ में खरी उतरी। इसलिए किसी रंग शैली की सार्थकता इसमें है कि कोई महान रचनाकार उसका सृजनात्मक उपयोग कैसे और क्यों करता है, और उस रंग शैली की प्रासंगिकता और अर्थवत्ता उस ऊर्जा के प्रभाव में अंतर्निहित है जो प्रस्तुति और दर्शक के बीच जन्म लेती है। अतः किसी रंग शैली की सार्थकता का अंतिम निकष दर्शक वर्ग ही है। यदि गौर से देखें तो पाएंगे कि हबीब तनवीर के रंगकर्म की सार्थकता और सफलता का निकष यही प्रयोगात्मक शोध, अनुसंधान और अन्वेषण की निरंतरता है जो हमें उनकी प्रस्तुतियों में हर बार नए रूप में नजर आती है। वे अपने आप को दोहराते नहीं, उनकी प्रस्तुतियों में हर बार कुछ नया जुड़ता है, पुराना छूट जाता है। नए संदर्भ, नई परिस्थितियाँ, नए दबाव उन्हें निरंतर ताज़ा बनाए रखते हैं। मंच और प्रस्तुतिकरण की सीमाओं से लेकर संभावित दर्शक तक अपनी रचनात्मकता को पूरी क्षमता से संप्रेषित करने का यह भाव ही उन्हें आधुनिक बनाता है। ये परंपरा को यथावत स्वीकार नहीं करते बल्कि उसमें निरंतर संशोधन करते चलते हैं। यह प्रयोगधर्मिता उनके नाटकों और प्रस्तुतियों को बूढ़ा नहीं होने देती। भाषा, तकनीकों और वैज्ञानिक सुविधाओं को उन्होंने त्याज्य नहीं समझा बल्कि अपने संप्रेषण को अधिक असरदार बनाने के लिए उनका भरपूर प्रयोग किया। स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र पाल को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था। भाषा तकनीकों के मुताबिक मेरे पास प्रेसिडियम स्टेज है, प्रकाश संयोजन है और यथार्थवादी रूप सज्जा है। मैंने शुरुआती दौर में उनका इस्तेमाल किया जो प्रस्तुतिकरण की मेरी शैली में उपयोगी हो सकते थे। अभी हाल ही में मैंने इस पर विचार शुरू किया है, एक उम्मीद के साथ कि भारत में आंचलिक कलाकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली रूप सज्जा को ही अपनाऊँ। बहुत साधारण, खासी किफ़ायतमंद और सस्ती, और प्रकाश संयोजन तथा मंच सज्जा के बारे में भी ऐसा ही कुछ करूँ। मंच कैसा हो, प्रेक्षागृह कैसा हो, दर्शक कहाँ किस तरह बैठेंगे और अभिनेता कैसे अभिनय करेंगे, जब तक हम अपनी परंपराओं की ओर नहीं लौटेंगे और दुनिया को अपनी परंपराओं की जानकारी नहीं देंगे, तब तक हम अभिव्यक्ति का वह स्वरूप विकसित नहीं कर सकेंगे जो आज के तकनीकी युग में ज़रूरी है, जहाँ नए किस्म की मांग बढ़ रही है। इसलिए जहाँ तक शैली, तकनीकी और प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो देशज हो, अपनी संपूर्णता में देशज हो, लेकिन साथ ही कथात्मक रूप से विश्वजनीन, आधुनिक, समसामायिक हो, हमारे युग का हो और इस स्पेस एज का हो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक और सम्भ्रांत समझे जाने वाले दर्शक वर्ग का है। आज से 30 वर्ष पहले तक यह समझा जाता रहा है कि महानगरों में पला बड़ा दर्शक पाश्चात्य विचारों और बोध से बहुत अधिक प्रभावित है। हमारे पारंपरिक रंगमंच का मुहावरा, भले ही उसे कितना ही अधिक संस्कारित क्यों न कर दिया जाए, उस दर्शक वर्ग को स्वीकार नहीं होगा जो देश तत्वों को पूरी तरह नकार चुका है। हमारे देश का आंचलिक मुहावरा उसके लिए अप्रासंगिक और निरर्थक हो सकता है। यह एक ऐसा विचार था कि जिसका उत्तर केवल ऐसी नाटक प्रस्तुतियों को ही हो सकती है जो आधुनिक तथा सम्राट दर्शकों को स्वीकार हो सके। हबीब तनवीर ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वह अप्रतिम है, किंतु इससे भी बढ़कर यह तथ्य है कि अपने रंगकर्म के प्रारंभिक दौर में ही वे इन प्रश्नों से जूझते हुए उन निष्कर्षों पर पहुंच चुके थे जिनकी व्याख्या की आज आवश्यकता जान पर नहीं पड़ती। दिल्ली जैसे महानगरों में अपने आंचलिक मुहावरों की सार्थकता के संबंध में उन्होंने तीखे शब्दों में उद्गार व्यक्त किया। मैं कहना चाहूँगा कि इन आंचलिक मुहावरों के नाटकों को दिल्ली जैसी जगहों में प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य तो यह है कि मैं इस तथाकथित सभ्य समाज के बनावटी और उड़े हुए आवरण को उतार देना चाहता हूँ, उन्हें एक ऐसे अहसास से परिचित कराना चाहता हूँ जो अत्यंत खरा, अधिक ऊर्जावान और जीवंत है। उन्हें खोलकर हंसने के लिए मैं गुदगुदाना चाहता हूँ, रुलाना चाहता हूँ, जिसके वे अभ्यस्त नहीं है। उनका एक ऐसी अभिनय पद्धति से साक्षात्कार करना चाहता हूँ जो पूरी तरह से अनौपचारिक है। अभिनय के सौंदर्य शास के अंतर्गत सीमाबद्ध कर ऐसे हास्य से अभिमुख करना चाहता हूँ जो असीम है। विगत 50 वर्षों से इस अनौपचारिक अभिनय पद्धति की अदम्य शक्ति और ऊर्जा से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के आधुनिक दर्शक वर्ग ही नहीं बल्कि संसार के अनेक अनेक देशों के प्रबुद्ध दर्शक भी पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। एडिनबरा के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अभिव तनवीर की आंचलिक रंगकर्म की आधुनिकता सर्वसिद्ध हो चुकी है। अभिनय के भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रति सारे संसार का आधुनिक रंगकर्म अभिमुख हो चुका है। इसकी पहल का संपूर्ण श्रेय अभिव तनवीर के रंगकर्म को ही जाता है। एक प्रश्न और, आगरा बाजार, चरणदास, चोर, बहादुर, कलारीन आदि नाटकों की अभूतपूर्व सफलता के बाद समझा जाने लगा कि यह आंचलिक या पारंपरिक मुहावरा कथ के दृष्टि से केवल पौराणिक या लोक कथाओं में ही प्रयुक्त है। आधुनिक जीवन के संश्लिष्ट एवं जटिल भंगिमाओं को संप्रेषित करने में उसकी सार्थकता संदिग्ध है। अभिव तनवीर के रंगकर्म में हमें इसके भी उत्तर मिले। भास, भवभूति, शुद्रक, विषाक्त आदि संस्कृत नाटकों से लेकर मोलियर, शेक्सपियर, गोल्डोनी, ऑस्कर वाइल्ड, लोरका, ब्रिस्ट तक के नाटकों को अपनी पारंपरिक मुहावरों में संप्रेषित करने का काम उन्होंने बखूबी किया है। देख रहे हैं नए जैसे मौलिक नाटकों में तो उन्होंने इससे भी बड़ी चुनौती का सामना किया। एक ऐसा कथ जो केवल मनुष्य के आंतरिक मनोव्यथा को तीव्रतर रूप में उद्घाटित करता है, इस पारंपरिक मुहावरे में ढल कर एक अभूतपूर्व संवेदना का भाग बन गया है। पारंपरिक मुहावरे रंगमंच की इस अदम्य शक्ति के प्रामाणिक स्वरों के बावजूद आज का रंगकर्मी यदि इसे फार्मूले की तरह काम में लेना चाहता है तो इस परंपरा के साथ गहरा सा अन्याय होगा। परंपरा और आधुनिक संवेदनाओं के तालमेल का रंगकर्म बेहद जोखिम भरा है। इस दृष्टि से निमित चंद्रजैन का यह कथन अत्यंत सटीक जान पड़ता है। हमें परंपरा का दास नहीं बनना है, पर साथ ही हमें उसके साथ मनमानी करने का भी कोई अधिकार नहीं। आधुनिक कला रचना में परंपरा के सृजनात्मक समावेश के लिए उसके प्रति अधिक गंभीर और संस्कारपरक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रत्येक परंपरागत पद्धति, रीति अथवा दृष्टिकोण में कुछ अंश ऐसा होता है जिसकी सार्थकता समाप्त हो चुकी है और जिसे जिलाने या फिर से लादने का चाहे जितना प्रयत्न किया जाए वह सफल नहीं होता। केवल अवांछनीय पुनरुत्थानवादी विकृति का प्रश्रय दे सकता है। कुछ ऐसा भी होता है जो काल प्रभाव में क्रमशः संचित विकृतियों से जनजीवन की निम्न स्तरीय धाराओं और प्रवृत्तियों से उपजता है। बहुत सारे अपने अहंकार व श्लोक कलाकार किसी भी परंपरागत तत्व का उद्धार करने की होड़ में हम इन विकृतियों को, कुरूपताओं को, कुसंस्कारों को जाने अनजाने उभार देते हैं। स्पष्ट ही अपनी तात्कालिक सफलता के बावजूद यह बड़ा अहितकर सिद्ध होता है जो परंपरा को भी भ्रष्ट करता है और आधुनिक कला प्रयोग और कला बोध को भी। वास्तव में पुनरुद्धार और नव संस्कार स्वस्थ और सजीव वंश का करना आवश्यक है जो प्राय सहज नहीं सूझता पर जो सृजनशीलता और मानव मूल्यों के बुनियादी सिद्धांत से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि और संस्कार द्वारा ही उसे पहचान कर हम न केवल उस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने युग के सृजन कार्य को भी एक महत्वपूर्ण आयाम और गहराई दे सकते हैं। रंगमंच के विकास के मौजूदा दौर में हमें पारंपरिक नाट्य की ओर उन्मुख होने की जितनी आवश्यकता है उतनी ही उसके प्रति एक स्वस्थ और दायित्वपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की भी है। तभी हम अपने प्रयत्नों को सार्थक और महत्वपूर्ण बनाने में सफल होंगे। भारतीय रंगमंच में परंपरा और आधुनिकता को लेकर आज भी संभ्रम बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि बड़ी संख्या में भारतीय रंग निर्देशक तो अपनी रंग परंपरा के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं किंतु समकालीन नाटककार उन्हें सहयोग और समर्थन देना जान नहीं पड़ता। संभवतः इसीलिए रंगकर्मी बार बार अपने नए मुहावरों की स्थापना के लिए संस्कृत नाटकों तथा पौराणिक एवं लोक कथाओं की ओर लौटते हैं। अनेक निर्देशक इसी मुहावरों की खोज के लिए अक्सर नाटककार का दायित्व भी स्वयं मोड़ लेते हैं। परिणाम यह होता है कि आलेख के स्तर पर नाटक बेहद कमजोर होते हुए भी प्रस्तुतिकरण के दिलचस्प शैलीकरण आकर्षक लगते हैं लेकिन यह आकर्षण छद्म है, क्षणिक है और कलात्मक रंगमंच के विकास में निश्चित बाधक है। अधिकांश नाटककार इस रंग परंपरा के प्रति आश्वस्त तो लगते हैं किंतु उनकी नाटकों का मुहावरा आज भी पश्चिमोन्मुखी है। लेकिन यह कोई निराशा की बात नहीं, भारतीय रंगमंच के लिए नए संक्रमण का दौर है। रंगकर्मियों की पहल आश्वस्त करती है कि उनकी दृष्टि में समझने वाले समान नाटककार भी सामने आएंगे। इस प्रसंग में भी नेमी जी के विचारों को उद्धृत करना समीचीन होगा। आज जो भारतीय नाटक है वह मात्र पश्चिमी मॉडलों की नकल नहीं है, वह नए रास्तों को टटोल रहा है, बना रहा है। मैं समझता हूँ कि यह एक प्रारंभिक और दौर है। इसमें अगले 50-100 साल में भारतीय नाटक की एक नई पहचान के साथ, एक नई शक्ति के साथ विश्व के रंगमंच और नाट्य जगत में स्थापित होगा। पर यह तभी संभव होगा जब हम पश्चिम की अंधी नकल को छोड़कर और इसमें जो कुछ श्रेष्ठ है और हमारे काम के लिए प्रासंगिक है उसे लेकर अपनी परंपरा के सार्थक तत्वों के साथ समन्वय करेंगे। आधुनिक भारतीय रंगकर्म को पारंपरिक रंग अवधारणाओं के श्रेष्ठ तत्वों को स्वीकार करने की नई पहचान मिलेगी। हमारा पारंपरिक रंगकर्म ही तब सही मायने में भारतीय आधुनिक रंगकर्म होगा।